जय श्री राम। भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी के पवित्र चरण कमलों द्वारा पावन हुई नासिक नगरी भारत भूमि के धार्मिक स्थलों में सर्वश्रेष्ठ है। सत्य युग में स्वयं ईश्वर गणों ने इस नासिक भूमि पर वास किया है। भगवान श्री भोलेनाथ जी ने महात्मा गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप इस पावन नगरी नासिक की भूमि पर गंगा गोदावरी मैया को उतार दिया। सदियों से बहने वाली गंगा गोदावरी मैया का अपने पवित्र धर्म ग्रंथों में बड़ा ही महत्व दर्शाया गया है। गंगा मैया ने अपने तट पर आए पतित पावन हीन दीन दुखी सुखी ऋषि मुनि देव दानव पुण्यवान या पापी ऐसा कभी भी दूजा भाव या भेद रखा नहीं। मैया गोदावरी ने सबके प्रति मातृत्व का रूप प्रकट किया है। गंगा गोदावरी मैया के नाम में एक गहन अर्थ है। गो का अर्थ होता है गाय, गोद का अर्थ होता है कोक एवं वरी का अर्थ होता है वरदान स्वरूप सबको अपनी कोख में समभाव से समाने वाली। ब्रह्मांड नायक जगत पिता आदिनाथ भोले शंकर जी ने पृथ्वीवासियों को ये एक अनोखा दान दिया है। धन्य है वो भारतवासी जो गंगा गोदावरी मैया के तट पर निवास करते हैं। गंगा मैया ने अपनी कोख में बसे सभी ग्राम एवं नगर को अपने पावन शीतल जल से हरा भरा रखा है। अपने तट के सभी पशु पंछियों को फूलों फलों को सभी सज्जन दुर्जन को अपने पवित्र जल से खुशहाली और हरियाली प्रदान की है। सचमुच जल ही जीवन है और इस जीवन में खुशहाली और हरियाली देने वाली मैया गंगा गोदावरी को पालनहार कहने में ही धन्यता है।
जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। सज्जन गुरजन का वेद न होए, सारे पापों को है माँ तू धोए। मैया तेरा दर्शन ममता का मिलन, सदा बहती सदा मुस्कुराती रहे, मुस्कुराती रहे।
प्राचीन समय की बात है, कृत युग के 2,00,000 बरस बीत चुके थे। माघांत शक था। इस समय भगवान श्री विष्णु जी ने कुर्म अवतार लिया था। बृहस्पति सिंह राशि में था। उसी समय शिव स्वरूप ब्रह्मगिरी पर्वत पर माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे मैया गंगा गोदावरी का ब्रह्मगिरी पर्वत के बीचों बीच गंगा द्वार पे शुभागमन हुआ।
इस जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। कुशावर्त है तीरथ महान, गौतम ऋषि को दिया वरदान। स्वयं बोले शंकर है त्र्यंबकेश्वर, कुंभ मेला सदियों से यहाँ पर लगे, हाँ यहाँ पर लगे।
कंद पुराण की बात है। देवाधिदेव श्री भोलेनाथ जी से रावण को वरदान प्राप्त हुआ। एक दिन रावण ने घमंड में आकर भगवान भोलेनाथ के दिए वरदान को आजमाने का प्रयास मात्र किया। रावण ने कपट रचाया। उस समय भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी एवं सीता मैया पंचवटी की हरी भरी वादियों में गंगा तट पर बैठकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे थे कि अचानक सीता मैया की दृष्टि सामने विचरण करने वाले स्वर्ण मृग पर पड़ी। तब उसे देख सीता मैया ने अपने स्वामी प्रभु रामचंद्र जी को उस स्वर्ण मृग के शिकार हेतु हट रचाया। प्रभु रामचंद्र जी ने मैया को मना किया, परंतु सीता मैया ने अपना हठ कायम रखा। अंत में प्रभु रामचंद्र जी उस स्वर्ण मृग के शिकार हेतु निकल पड़े। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी पंचवटी स्थित अपनी कुटिया के पास आए। मैया से भैया रामचंद्र जी पास न होने का कारण पूछने लगे। सीता मैया ने हकीकत बताई। लक्ष्मण जी के ध्यान में आया कि इस शिकार में कहीं कपट तो नहीं। उन्होंने अपने धनुष बाण से कुटिया के सामने लकीर खींच दी। इस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। और लक्ष्मण जी ने सीता मैया से कहा,
इस जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। ऋषि रूप में रावण है आया, भिक्षा देई का घोष लगाया। भिक्षा करूं स्वीकार करे रेखा, जब पार पार करते ही रेखा हरण वो करे, रावण हरण करे।
सीता मैया का रावण ने जहां से हरण किया था यही वो स्थल है। सदियों से अभी तक प्रभु रामचंद्र जी की असीम कृपा से इस भूमि पर 5 बरगद के पेड़ बड़े ही शान से खड़े हैं। सदियों से अपनी शीतल छाया वह भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी के वनवास काल में उन्हें हमेशा राक्षसों के साथ लड़ना पड़ता था। मैया सीता के रक्षण हेतु प्रभु ने मैया के लिए एक गुफा बनवाई थी। इसे सीता गुफा कहा जाता है। गुफा में जाने का रास्ता सकरा एवं छोटा है। गुफा में प्रवेश करते ही और एक दूसरी गुफा है। पहली गुफा में प्रभु रामचंद्र जी, मैया सीता जी और लक्ष्मण जी की मन को लुभाने वाली सुंदर मूर्तियां हैं। दूसरी गुफा में शिवलिंग है। इस पूज्य शिवलिंग की मैया सीता नित्य पूजा करती थी। अब सीता गुफा से बाहर आते ही सीता श्रृंगार घर है। कहा जाता है मैया सीता यहां अपना श्रृंगार करती थी। बाजू में खड़े 5 बरगद के पेड़ हैं। बरगद को मराठी में वट कहते हैं। इसी कारण इस पावन भूमि को पंचवटी कहा जाता है। इसी पावन भूमि पर राक्षसों का नाश करने हेतु प्रभु रामचंद्र जी ने अपना काला रूप धारण करके ऋषि मुनियों को संतुष्ट किया। इसी स्मृति में श्रीमती गोपिकाबाई पेशवा के प्रोत्साहन से सरदार खंडेराव और रंगराव ओढ़ेकर ने सदी 1794 में काला राम मंदिर बनवाया। यह भव्य मनोहारी मंदिर डिंगेरी गांव के रामसेज किले का काला पत्थर इस्तेमाल करके बनवाया गया है। मंदिर के चारों तरफ 6 फीट चौड़ा तथा 15 फीट ऊंचा पूरब, दक्षिण एवं उत्तर दिशाओं में एक एक दरवाजा है। प्रांगण के बराबर मध्य पर मंदिर की ऊंचाई 70 फीट है। मंदिर में प्रवेश करते ही मैया सीता जी, प्रभु रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी की अति सुंदर मन को लुभाने वाली मूर्तियां ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखाई देती है। मूर्तियों के आसपास चांदी के पत्रों से सजाया गया है। मुख्य मंदिर के प्रांगण में श्री दत्त मंदिर, भगवान श्री गणेश जी का मंदिर एवं हनुमान जी का मंदिर है। भक्तजन हर वर्ष चैत्र शुद्ध प्रथमा से नवमी तक यहां राम जन्म उत्सव बड़े ही आनंदमय भावपूर्ण वातावरण में मैया गंगा गोदावरी के तट पर मनाते हैं।
कश्यप ऋषि की अमृत वाणी प्रभु राम जी ने वो मानी। मैया गंगा तट पर पावन राम कुंड पर पिता दशरथ का श्राद्ध यहीं पर किए, यहीं पर किए।
Just
जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे।
स्कंद पुराण में दी गई जानकारी के अनुसार महामुनि श्री कश्यप ऋषि की आज्ञा से भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी ने अपने परम पूज्य पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध नासिक पुण्यभूमि में बहती पवित्र गंगा गोदावरी मैया के तट पर किया था। तभी से इस जगह को रामकुंड कहा जाता है। मैया गंगा गोदावरी बड़ी ही भाग्यशाली है। मैया ने महापुण्यवान ईश्वर लोगों की अपने पवित्र जल से सेवा की है। तभी से आज तक श्रद्धालु भक्तगण अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराने हेतु भारत के विभिन्न स्थानों से आते हैं और श्रद्धादि कर्म यहां करते हैं। प्राचीन समय की बात है, कहा जाता है कि देवो भक्ति में लीन रहने वाले साधु संत ऋषि मुनि इसी नासिक की पावन राम भूमि पर गंगा मैया में स्नान करते थे तथा यहीं गंगा मैया तट पर बसे कुदरती घने जंगल में अपना जप तप करते थे। इसीलिए इस पावन भूमि को तपोवन कहा गया है। यह स्थान ब्रह्म योनि नाम से भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा लाने हेतु यहां राक्षसों ने महात्मा मुनियों को बड़ा ही कष्ट पहुंचाया था। तभी सभी ऋषियों और तपस्वियों ने प्रभु रामचंद्र जी को प्रसन्न किया और अपने तप को सफल बनाने के लिए प्रभु से इन राक्षसों का नाश करने के लिए प्रार्थना की। श्री प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सभी भक्तों को पीड़ा से मुक्त करने हेतु सभी राक्षसों का नाश किया। कहा जाता है कि इसी तपोभूमि में सूर्पणखा की नाक काटी गई थी। इसी कारण इस पुण्य पावन नगरी को नासिका, बाद में नासिक कहा गया। इसी तपोभूमि में महायोगी राष्ट्र संत परम पूज्य श्री जनार्दन स्वामी जी ने जाप ताप किए। इसी भूमि में राष्ट्र संत श्री जनार्दन स्वामी जी का भव्य मनोहारी पावन मठ है। मठ में गौशाला भी है। इस पवित्र स्थल में गरीब छात्रों के लिए अनुदानित सुविधा भी उपलब्ध है। धनिक भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा से धार्मिक तिथियों को मठ में अन्नदान करते हैं। इसी मैया गंगा गोदावरी के तट पर ज्ञानी अज्ञानी वास किए हैं। गंगा गोदावरी मैया के तट पर मन को लुभाने वाला अत्यंत सुंदर कपालेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि एक बार देवोगणों की सभा में पंचमुखी ब्रह्मदेव के एक मुख से अशुभ वाणी निकली और वह वाणी देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ जी ने सुनी। वह अशुभ वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ क्रोधमय हुए। क्रोधित भोलेनाथ ने अपने पावन हाथों से ब्रह्मदेव का एक मस्तक त्रिशूल से काट दिया। भगवान भोलेनाथ पर ब्रह्म हत्या पातक का आरोप लगाया गया। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्म हत्या पातक से मुक्ति पाने के लिए सब तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या पातक से मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। निराशा फल भगवान भोलेनाथ भ्रमण ही कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक छोटे नंदी पर पड़ी। छोटा नंदी अपने माता को बातचीत में बोल रहा था कि नासिक नगरी जो जाए राम कुंड में स्नान करे सो सभी हत्या पापों से मुक्ति पाए। यह छोटे नंदी की वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ आश्चर्यमय हुए। वह तुरंत नासिक नगरी गंगा गोदावरी मैया तट पर विराजे और राम कुंड में स्नान किए, ब्रह्म हत्या पातक से मुक्ति पाए। इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने नंदी को अपना गुरु माना। भगवान ने उस नंदी से कहा, हे गुरुवर, आपसे मुझे ब्रह्म हत्या पातक से मुक्ति का मार्ग मिला। मैंने आपको अपना गुरु माना है। आज से आप यहां मेरे सामने सेवक बनकर नहीं बैठेंगे। इसी कारण इस कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी के सामने नंदी दिखाई नहीं देता। इस पावन नगरी नासिक भूमि पर बहती गंगा गोदावरी मैया ने अपने तट पर स्थित रामकुंड में अपने पवित्र जल से ब्रह्म हत्या पातक कहलाने वाले आदिनाथ भोले शंकर जी को भी मुक्ति दिलाई। धन्य है ये गंगा गोदावरी मैया।
सुनकर ब्रह्मा की अशुभ वाणी, भोले शंकर ने की एक नादानी, सर को काट दिया त्रिशूल को फेंक कर, ब्रह्म हत्या के शिव जी भागी बने। हाँ भागी बने
मैया, मैया, मैया।
इस जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे।
मैया गंगा गोदावरी के तट पर बसा ये सुंदर नारायण मंदिर एक अति प्राचीन पाषाण शिल्पकृति का बड़ा ही सुंदर नमूना है। प्राचीन समय की बात है, जालंधर नामक एक राक्षस की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उसके पुण्य का लाभ उसके पति को मिला। वृंदा देवी ने अपने पावन भक्ति से भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मृत्यु उनके पति से दूर रहे। वर मिलने के उपरांत जालंधर दुस्साहसी बन गया और वो सामान्य जन ऋषि मुनि तथा देवी देवताओं को भी पीड़ा देने लगा। तब भगवान श्री विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा देवी के साथ उसका पतिव्रत धर्म भंग किया और इससे वृंदा देवी की पतिव्रता पर आंच आ गई और उसका पुण्य समाप्त हो गया। इसी कारण जालंधर राक्षस का नाश हो गया। जब वृंदा देवी को पता चला तो वह तुरंत भगवान श्री विष्णु जी को श्राप देने लगी, जिससे भगवान श्री विष्णु जी का गोरा बदन काला हो गया। भगवान श्री विष्णु जी भोलेनाथ जी के पास गए। भगवान भोलेनाथ जी ने पूर्ववत अपना गोरा रूप लाने हेतु श्री विष्णु जी को राम कुंड में स्नान करने के लिए कहा। राम कुंड में स्नान करने के उपरांत भगवान श्री विष्णु जी को अपना गोरा रूप फिर से प्राप्त हुआ। इसी स्मृति में ईस्वी सन 1756 में पुण्य श्लोकी अहिल्याबाई होलकर के मराठा सरदार गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ने उस समय 10 लाख रुपए व्यय करके इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की सुंदर मूर्ति है। भगवान श्री विष्णु जी के दाएं बाएं माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती की मूर्तियां हैं। मैया गोदावरी के तट पर ये नारोशंकर मंदिर है। यह सन 1747 में बनवाया गया। इसके बनाने में उस समय करीबन 18 लाख रुपए लागत आई। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 6 फीट व्यास का कांस्य धातु का बड़ा घंटा लटकाया गया। इतिहास द्वारा पता चलता है कि बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा और उनका बहादुर साहसी सरदार नारोशंकर, इन दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों पर हमला किया और विजय हासिल की। वहां के चर्च पर जो घंटा लगा था उसे निकालकर बड़ी धूमधाम के साथ हाथी के गले में बांधकर यहां लाया गया और इसे इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर लटकाया गया। पहले इस मंदिर का नाम रामेश्वर था, उसे बदलकर साहसी सरदार नारोशंकर का नाम दिया गया और आज यह नारोशंकर घंटा नासिक नगरी का मान चिन्ह बना। ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थल मैया गंगा गोदावरी के तट पर बसे हैं। मैया ने सदियों से आज तक नासिक नगरी विराजे सभी भक्तगणों की अपने पवित्र शीतल जल से स्नान तथा जलपान कराकर असीम सेवा की है।
तट पर मैया के धाम नारोशंकर, पुण्य फल वो पाए भक्त आकर, घंटा नाद ऐसा सुना दे कोसों का, नारोशंकर का सब गुण गान करे।
महामंगल गान करे
गोदावरी में सिंहस्थ महापर्व काल बहुत ही सुनहरा होता है। 12 वर्षों के पश्चात बृहस्पति सिंह राशि में आते ही पुण्य नगरी नासिक एवं श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नगरी नासिक में कुंभ मेले के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के वनवास के कारण पावन पुनित हुई पंचवटी में गंगा गोदावरी मैया के तट पर स्थित श्री राम कुंड में साधु संत महात्मा एवं श्रद्धालु भक्तजन स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पद्म पुराण में एक बार सभी देवतागण एकत्र होकर देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ जी के पास गए और उनसे विनम्र निवेदन कर बोले, हे देवाधिदेव, हम लोगों ने मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य के समस्त पाप धोए, इसी कारण मनुष्य के पापों के भार से हम लोग लिप्त हो गए हैं। अब मनुष्यों का पाप भार सहन करने की क्षमता हम में नहीं है। हे भोलेनाथ, हमें इस दशा से मुक्त कीजिए। इन तथ्यों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, देवगणों, बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर आप सब तीर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर जाइए। वहां गौतम आश्रम में जाकर श्री गंगा जी गोदावरी के साथ एक रूप होकर एक वर्ष तक निवास करें एवं साधु महात्मा के रूप में आए और स्नान करें, आपके पापों का भार नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कुंभ मेले के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान देवों और दानवों को 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जो कि इस प्रकार है, श्री लक्ष्मी जी, धनंतरिणी, एरावत हाथी, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, रंभा अप्सरा वारुणी, पुष्पक विमान, कामधेनु गौ, पारिजात पुष्प, श्याम कर्ण जश्न, अमृत, पंचजन्य शंख और गरल यानी हलाहल विष समुद्र मंथन से अमृत कुंभ, समुद्र के बाहर निकाले जाने पर देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि अमृत कुंभ का अमृत पान कर दानव व असुर अमर हो जाएंगे। तब वे देवताओं और मनुष्यों को भयानक उत्पीड़न करेंगे। तभी सभी देवताओं ने मंत्रणा की कि किसी भी प्रकार इस अमृत को असुरों से बचाया जाए। देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से पलायन कर जाने को कहा। इसी अमृत को प्राप्त करने हेतु देवता और दानवों के बीच 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध काल में अमृत कुंभ की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये अमृत बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी व श्री सिद्ध क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में गिरी। तभी से हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। पुण्यतीर्थ नासिक भूमि में महाकुंभ मेले के समय मैया गंगा गोदावरी के तट पर भारत के अनेक राज्यों से संत महात्मा एवं श्रद्धालु भक्तजन इस महत्वपूर्ण स्नान के लिए बड़े ही उत्साह एवं आनंद से आते हैं।
देवगण बोले जिसे लगे कहने, मृत्यु लो पाप हम लगे सहने, देव मुक्ति देवा देवों ने कहा, गंगा स्नान से सबका बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे।
दर्शन देते रहे
देवो नगरी नासिक में मैया गंगा गोदावरी के तट पर बसा भक्ति धाम मंदिर बहुत ही सुंदर तथा मन को लुभाने वाला है। प्रवेश द्वार पर भगवान श्री गणेश जी की एवं मैया भगवती सप्तशृंगी देवी की मनोहारी मूर्तियां हैं। भक्तगण हर धार्मिक तिथि को बड़े ही श्रद्धा से दर्शन हेतु भीड़ लगाते हैं। नासिक नगरी में ऐसा भी एक पवित्र स्थल है जो इच्छामणि के नाम से प्रसिद्ध है। माह की हर चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु भक्तजन बड़े ही श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इच्छामणि के दर्शन से भक्तों के मन की मंशा एवं मनोकामना पूर्ण होती है। पुण्य भूमि नासिक नगरी में आनंदवली स्थित मैया गंगा गोदावरी के तट पर यही वो स्वयंभू गणेश स्थल है। ये पावन स्थल नवश्या गणपति के नाम से जाना जाता है। सदियों से भगवान श्री गणेश जी के दर्शन लाभ हेतु भक्त हर दिन भीड़ लगाते हैं। यहां स्वयंभू गणेश जी का दर्शन होने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी स्थल पर अष्ट विनायक गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। नासिक की भूमि पर ये एक जागृत स्थान है। इस स्थान को काली का मंदिर नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु भक्तजन बड़े ही श्रद्धा से मैया के मंदिर में नवरात्रि त्योहार मनाते हैं।
जीवन का खुशहाल
जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। नासिक नगरी कहलाए देवो भूमि, सोमेश्वर चले शिव धूनी। यहाँ आओ एक बार, होता पीड़ा संहार, दर्शन बोले का यहाँ यूं ही होते रहे, यहाँ होते रहे।
देवो भूमि नासिक नगरी में मन को लुभाने वाला अत्यंत जागृत स्थल ये है। इस स्थल को सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मनोहारी मंदिर में भगवान गणेश जी की चांदी की मूर्ति है। यह स्थल नासिक नगरी में रविवार कारंजा सर्कल बाजार पेठ में स्थित है। यहां चतुर्थी के दिन दर्शन लेने हेतु भक्तों की भारी भीड़ लगती है। भक्तगणों को भगवान श्री गणेश जी का दर्शन लाभ होते ही भक्तों की हर पीड़ा दूर हो जाती है। यही वो धाम है। इस धाम को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1971 में सुप्रसिद्ध बिटको शेठ द्वारा किया गया है। यह मंदिर संपूर्ण संगमरमर पत्थर से निर्मित किया गया है। इस मंदिर को भारत के आधुनिक शीर्ष मंदिरों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहां हमें चारों धाम के दर्शन एक ही जगह हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इनकी मनोहारी मूर्तियां देख मन भक्ति भाव में रम जाता है। यहीं दाईं ओर राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियां हैं। भक्तजन दूर दूर से आकर दर्शन लाभ लेते हैं। यहां श्री लक्ष्मी नारायण जी अर्थात भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। रोज प्रातः 7 बजे ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती है, जिसमें सभी भक्तगण शामिल होकर भक्ति में लीन होकर आरती करते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर में हमें भगवान द्वारकाधीश, दुर्गा माता, महालक्ष्मी जी, सिद्धि विनायक, महासरस्वती, दत्त भगवान, गायत्री देवी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जी, भगवान झूलेलाल जी एवं भगवान के सभी अवतारों का दर्शन यहां होता है। इस मंदिर की आगे की कड़ी में हमें बद्रीनाथ धाम देखने को मिलता है। यहां भगवान बद्रीनाथ अर्थात विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कुबेर, इंद्रदेव, वरुण देव, श्री गणेश के साथ विराजमान है। श्री दंडकारण्य में श्री प्रभु राम की पर्ण कुटी दिखाई देती है। यहां रावण सीता जी से भिक्षा मांगते एवं प्रभु राम द्वारा मारीच वध की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। इससे आगे वैकुंठ धाम में श्री तिरुपति बालाजी, व्यंकटेश भगवान, श्री रणछोड़ राय डाकोर जी एवं नवनाथ जी के भी दर्शन यहां होते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि भगवान के सभी अवतारों की मूर्तियां यहां स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन यहां होते हैं। कैलाशपति स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इसके अलावा महाबली वीर हनुमान जी, विश्ववंद्य विट्ठल, रुक्मणी जी एवं शिरडी के साईं बाबा की अति सुंदर मन को लुभाने वाली मनोहारी मूर्तियों के भक्तजन दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। ये मंदिर नासिक की शान एवं धामों का धाम, महाधाम, मुक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध है। देवो नगरी नासिक में बसा ये भव्य मंदिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है।
मुक्ति धाम सारे धामों से प्यारा, दर्शन करने आवे जग सारा। नासिक नगरी की शान, सारे देवों का धाम, ऐसी भूमि को सारे प्रणाम करे। हाँ प्रणाम करे।
सनातन धर्म अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 3.5 शक्तिपीठ है। इसमें तुलजापुर की माता तुलजा भवानी, कोल्हापुर की अम्बा भवानी, मोहरगढ़ की कुलस्वामिनी रेणुका देवी एवं देवी का 3.5वां शक्तिपीठ है श्री सप्तशृंगी गढ़। देवी का ये पवित्र शक्तिपीठ पुण्यभूमि नासिक क्षेत्र से 55 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य में स्थित है। श्री सप्तशृंगी गढ़ की तलहटी में नानूरी ग्राम बसा हुआ है। सप्तशृंगी गढ़ 11 किलोमीटर है। गढ़ की पठार से देवी के मंदिर जाने के लिए करीबन 500 पायदान ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। इस स्थान के बाजू पर्वतीय भाग के ऊपर 7 पर्वतीय शिखर प्राकृतिक रूप से निर्मित है। सप्त का मतलब होता है 7 एवं शृंग का मतलब होता है शिखर। मैया सप्तशृंगी ने इसी सप्तशृंग पर्वत पर महिषासुर नामक राक्षस का वध करने हेतु वास किया। इसी कारण मैया को सप्तशृंगी निवासिनी कहा जाता है। इस पर्वत पर अनेक जलकुंड भी हैं, जिसमें अनेक औषधीय गुण विद्यमान हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी और लंकेश्वर रावण युद्ध में श्री लक्ष्मण जी के घायल होने पर वैद्यराज सुषेण द्वारा बताए प्राण रक्षक जड़ी बूटी संजीवनी के लिए पवन पुत्र महाबली श्री हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर जा रहे थे, तब उस पर्वत का कुछ हिस्सा जो गिरा, वही ये सप्तशृंगी पर्वत है। इसी पर्वत पर 108 ऐसे जलकुंड हैं जो तीर्थों के रूप में माने जाते हैं।
मैया, गोदा मैया,
इस जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। मैया के ध्वज की महिमा निराली, पहराते कल वनवासी गवली, चतुर्दशी तिथि बारह बजे रात्रि, ध्वज मैया का ये लहराता रहे, लहराता रहे।
पावन भूमि नासिक से 25 किलोमीटर दूरी पर दत्त संप्रदाय दत्तात्रेय अवतार श्री स्वामी समर्थ इनका बहुत ही पवित्र स्थल है। श्री परम पूज्य पीठले महाराज इन्होंने गुरु मावली परम पूज्य श्री दादा साहब मोरे को अनुग्रह दिया है। गुरु मावली श्री परम पूज्य दादा साहब मोरे श्री स्वामी समर्थ भक्तों को दत्त संप्रदाय अनुसार मनुष्य के दुख निवारण हेतु सफल मार्ग दिखाते हैं। भक्तगण बड़े ही भक्ति भाव से यहां दत्त जयंती एवं हर धार्मिक त्योहार बड़े ही श्रद्धा से मनाते हैं। देवो भूमि नासिक नगरी में अन्य ऐसे भी स्थल हैं जिनका इतिहास काल में बड़ा ही महत्व है। सम्राट अशोका के साम्राज्य काल में नासिक नगरी के दक्षिण दिशा में एक ऊंचे पर्वत पर गुफा में बौद्धकालीन अप्रतिम शिल्प का नमूना है। इस स्थल को पांडव लेणी के नाम से भी जाना जाता है। चीनी पर्यटक युआन शोंग ने इस गुफा को त्रिरश्मि बुद्ध लेणी से संबोधित किया था। यह स्थल प्रेक्षणीय स्थल है। इसी पर्वत के पास फिल्म सृष्टि के जनक चित्र महर्षि दादा साहब फाल्के की स्मृति में बनवाया गया मनोहारी फाल्के स्मारक है एवं स्मारक में भव्य बुद्ध विहार भी है। नासिक भूमि धार्मिक ऐतिहासिक एवं यांत्रिक भूमि के नाम से विश्व में जानी पहचानी जाती है। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई वो स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान सपूत ने इसी भूमि में जन्म लिया। वह स्थान भगूर में है। भगूर में मैया रेणुका देवी का बहुत ही जागृत स्थान है। इसे भगूर की देवी नाम से जाना जाता है। मैया गंगा गोदावरी के तट पर बसे सभी धाम देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास यहां गवाह है। पुण्य भूमि नासिक नगरी के दर्शन पाकर संपूर्ण भारतवर्ष के निवासी धन्य हो जाते हैं। मैया गंगा गोदावरी ने अपने तट पर बसे सभी ग्राम तथा नगरों को हमेशा सुजलाम सुफलाम का वरदान देकर सबका जीवन मंगलमय किया है। ऐसी पावन है मैया गोदावरी की शक्ति कि मृत्यु उपरांत भी मां देती है मुक्ति। ऐसे दयालु मां गंगा गोदावरी तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम।
स्वामी समर्थ स्थल है तिनोरी।
अमृत सा पानी बहे, इस जीवन को खुशहाली देती रहे, हाँ देती रहे। बहती रहे सबका जीवन मंगलमय करती रहे, मैया ममता की प्याली सुखी सारे सवाली, मैया नाता ये मरते दम तक रहे, मरते दम तक रहे।
Yeah.